नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के अंतर्गत मिस्ट स्प्रे सिस्टम और एंटी स्मॉग गन लगाने का लक्ष्य निर्धारित समय से पहले हासिल किया गया। दिल्ली सरकार के उद्योग मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, 2026-27 के केंद्रीय बजट में महिलाओं के लिए 11% की बढ़ोत्तरी। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने शेयर बाजार में निवेश पर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय साइबर गिरोह का पर्दाफाश कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। और ईशा सिंह ने एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज कहा कि दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के अंतर्गत मिस्ट स्प्रे सिस्टम और एंटी स्मॉग गन लगाने का लक्ष्य निर्धारित समय से पहले हासिल कर लिया गया है। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि सभी 143 एलिवेटेड मेट्रो स्टेशनों पर राजधानी को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में सरकार का ये महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था के अंतर्गत 89 ऑन रोड और 54 ऑफ रोड एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन शामिल हैं। उन्होंने जानकारी दी कि अब तक 131 मिस्ट स्प्रे सिस्टम और 12 एंटी स्मॉग गन स्थापित की जा चुकी हैं। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि वायु प्रदूषण से निपटना सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए जमीनी स्तर पर ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज मुख्यमंत्री जन सेवा सदन में जन सुनवाई के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आए नागरिकों की समस्याएं सुनी। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि अंत्योदय की भावना से कार्य करते हुए हर नागरिक का जीवन आसान बने। इस दौरान महिलाओं और मध्यम वर्गीय परिवारों ने होली और दिवाली पर निःशुल्क गैस सिलेंडर की राशि देने के फैसले पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। दिल्ली सरकार के उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज कहा कि 2026-27 के केंद्रीय बजट में महिलाओं के लिए आवंटित बजट में 11% की बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने बताया कि हर शहर में बालिका छात्रावास खोलने के लिए 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में श्री सिरसा ने कहा कि ये बजट किसान, मजदूर, महिला, युवा और उद्यमी समेत हर वर्ग को सशक्त बनाने पर केंद्रित है।
भारत के ऐसे समय में जब पूरी दुनिया एक आर्थिक संकट के तरीके से निकल रही है, ऐसे में भारत की अर्थव्यवस्था को और तेज गति देने का काम करने वाला बजट, ये बजट हर वर्ग के साथ हर वर्ग को आगे बढ़ाने का काम करने वाला, उसको सशक्त करने वाला बजट है। चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, उद्यमी हो, व्यापारी हो, ये बजट विकसित भारत के सपने को साकार करने वाला, ये हमारी इस सरकार की दूरदर्शी विजन को स्पष्ट करता है।
श्री सिरसा ने बताया कि इन कदमों से कनेक्टिविटी बेहतर होगी, प्रदूषण कम होगा, व्यापार करने में आसानी होगी और युवाओं को नए अवसर मिलेंगे। उन्होंने केंद्रीय बजट को लेकर कहा कि ये बजट भारत की अर्थव्यवस्था को गति देने और विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। दिल्ली के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री पंकज कुमार सिंह ने आज कहा कि दिल्ली सरकार कैंसर को लेकर जागरूकता फैलाने के साथ साथ स्क्रीनिंग टेस्ट भी कराएगी। उन्होंने कहा कि इससे शुरुआती चरण में ही मरीजों का प्रभावी इलाज संभव हो पाएगा। दिल्ली राज्य कैंसर संस्थान द्वारा संचालित CAPS कैंसर जागरूकता, रोकथाम और स्क्रीनिंग पहल के उद्घाटन के अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि दिल्ली सरकार कैंसर से संबंधित पहलों पर व्यापक रूप से काम कर रही है।
सर्वाइकल का वैक्सीनेशन हम बहुत जल्दी ला रहे हैं और लोगों के लिए उनको लाभ मिले, उससे उसको प्रिजर्व हो। देखा जाता है कि कैंसर पेशेंट जो थर्ड और फोर्थ स्टेज में आते हैं, शुरुआत के दौर में कैंसर के बारे में पता चलेगा तो उसका इलाज अच्छे से हो भी पाएगा और आने वाले दिनों में दिल्ली की जनता को इसका लाभ किस किस प्रकार मिले। वैक्सीन तो हम ला ही रहे हैं और मोबाइल कैंसर वैन भी चलाएंगे, ये हमारे फ्यूचर में हमारा प्लान है।
आज विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि ये दिन कैंसर से ठीक हुए लोगों की सहायता करने और एक स्वस्थ समाज के लिए नियमित जांच को बढ़ावा देने का अवसर है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नड्डा ने बताया कि हर जिले में कैंसर डे केयर यूनिट्स की स्थापना और आवश्यक कैंसर दवाओं पर सीमा शुल्क में छूट से मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर बड़े पैमाने पर जांच के माध्यम से कैंसर के उपचार में काफी सहायक हैं, जिससे पूरे देश में जल्दी पहचान और समय पर इलाज संभव हो रहा है। इस साल विश्व कैंसर दिवस की विषय वस्तु है यूनाइटेड बाय यूनिक, जिसका उद्देश्य है लोगों को देखभाल के केंद्र में रखना। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के हेमटोलॉजी विभाग की प्रोफेसर डॉ तुलिका सेठ ने कहा कि कैंसर का इलाज संभव है और कई मामलों में ये ठीक हो सकता है। डॉ सेठ ने कहा कि कैंसर संक्रामक नहीं है और शुरुआती निदान से इसका इलाज संभव है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने शेयर बाजार में निवेश के नाम पर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय साइबर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 9 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी विदेश में बैठकर फर्जी निवेश प्लेटफॉर्म और म्यूचुअल फंड खातों के नाम से लोगों से धन की ठगी करते थे। पुलिस ने लोगों से निवेश से जुड़े किसी भी संदिग्ध कॉल, संदेश या ऑनलाइन प्रस्ताव के प्रति सतर्क रहने और तुरंत पुलिस को सूचना देने की अपील की है। फरीदाबाद में आयोजित सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले में इथियोपिया का पेवेलियन दर्शकों के लिए प्रमुख आकर्षण का केंद्र बनकर उभरा है। एक रिपोर्ट।
31 जनवरी से 15 फरवरी तक चल रहे इस विश्व प्रसिद्ध मेले में लगभग 1200 स्टॉल और 50 से अधिक देशों के कारीगर अपनी अपनी पारंपरिक कला और संस्कृति का प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी क्रम में इथियोपियाई कारीगरों की बारीक कारीगरी, विशिष्ट डिजाइन और पारंपरिक रंगों ने दर्शकों का विशेष ध्यान आकर्षित किया है। इथियोपिया, बोत्सवाना और सेनेगल के युवा जेंजी कलाकार भारतीय संस्कृति से प्रभावित नजर आए। इन कलाकारों ने भारतीय लोकप्रिय गीतों पर पारंपरिक और फ्यूजन शैली में नृत्य प्रस्तुत कर दर्शकों का दिल जीत लिया। कई विदेशी कलाकारों द्वारा हिंदी भाषा के प्रति विशेष रुचि और ज्ञान भी देखने को मिला, जो भारत की सांस्कृतिक वैश्विक पहुंच को दर्शाता है। इथियोपियाई प्रतिनिधिमंडल केवल हस्तशिल्प तक सीमित नहीं है, बल्कि तालबद्ध पारंपरिक नृत्य, लोक संगीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से अपनी प्राचीन सभ्यता, समृद्ध परंपराओं और जीवंत रचनात्मक विरासत को भी प्रदर्शित करता है। उमेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए प्रशांत कुमार।
दिल्ली विश्वविद्यालय ने एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ साइंसेज नाम से ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है। इसका शुभारंभ कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह ने किया। उन्होंने कहा कि भविष्य में प्रौद्योगिकी केंद्रित चिकित्सकों की आवश्यकता बढ़ेगी और एआई रोजगार छीनने के बजाय नए अवसर पैदा करेगा। 15 सप्ताह की अवधि वाला ये ऑनलाइन कोर्स 8 मॉड्यूल में संचालित होगा, जिसमें प्रत्येक बैच में 50 सीटें रहेंगी। कोर्स का उद्देश्य प्रतिभागियों को मेडिकल एआई सिस्टम के डिजाइन, मूल्यांकन और नैतिक उपयोग की समझ पैदा करना है। दिल्ली सरकार ने विकसित करावल नगर के लक्ष्य की दिशा में अब तक 300 करोड़ रुपए के कार्य स्वीकृत किए हैं। ये जानकारी दिल्ली सरकार में मंत्री और करावल नगर से विधायक कपिल मिश्रा ने दी। उन्होंने आज करावल नगर क्षेत्र में कई नव निर्माण कार्यों का शुभारंभ भी किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में बस सेवाओं में 3 गुना वृद्धि की जाएगी। करावल नगर डिपो, भगत सिंह कॉलोनी और चौहान पट्टी से कई नई ई बसों की शुरुआत होगी। वहीं इस क्षेत्र में कुल 12 आरोग्य मंदिर भी खोले जाएंगे। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद एनडीएमसी के अध्यक्ष केशव चंद्र ने आज बताया कि काका नगर को अनुपम कॉलोनी घोषित किया गया है। उन्होंने बताया कि इस कॉलोनी में सफाई के लिए हैंड हेल्ड स्वीपर और गॉबलर मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है और ये पहली कॉलोनी है जहां सफाई के लिए केवल मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है। श्री केशव चंद्र ने कहा कि इस पहल से पुनर्चक्रण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।
आज ये काका नगर की कॉलोनी 6 कॉलोनी है एनडीएमसी की, जिसे अनुपम कॉलोनी डिक्लेयर किया जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये पहली कॉलोनी है जहां पे कंप्लीट मैकेनाइजेशन है कि हैंडल स्वीपर मशीन और गॉबलर के साथ इसमें सफाई का अभियान चलाया जा रहा है। और ये इसी मॉडल को यदि ये यहां पे सक्सेसफुल होता है तो हम सारी कॉलोनी में इसी मॉडल को अपनाएंगे, ताकि जो प्रदूषण, जो झाड़ू से होने वाला प्रदूषण है, उसको रोका जा सके और कितना ऑप्टिमम यूज हो सके इन सारे हैंडहेल्ड पुशबैक स्वीपर्स का और गॉबलर्स का, उसका भी हम लोग आकलन करेंगे और उसको सारी जगह पर रेप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे।
दिल्ली की वायु गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति डीपीसीसी ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM के निर्देशों का उल्लंघन करने वाले डीजल जनरेटर सेट के खिलाफ एक व्यापक जांच अभियान चलाया। अभियान के दौरान 300 औद्योगिक और व्यावसायिक संस्थानों में लगे डीजल जनरेटर सेट की जांच की गई और 108 इकाइयों को सीलिंग मेमो तथा कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। इस संबंध में पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि नियमों का पालन न करने वाली इकाइयों पर की गई ये कार्रवाई स्पष्ट संदेश देती है कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देशों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वाली इकाइयों पर पर्यावरणीय मुआवजा भी लगाया जाएगा और दंड की गणना तय मानकों के अनुसार ही की जाएगी। नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारतीय व्यापार महोत्सव 1 से 4 मई तक आयोजित होगा। ये जानकारी दिल्ली के सांसद और कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री खंडेलवाल ने बताया कि इस राष्ट्रीय पहल को व्यापार और उद्योग को मजबूत बनाने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से शुक्रवार को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को देखने का आग्रह किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं के साथ बातचीत करना ऊर्जापूर्ण रहा। उन्होंने परीक्षार्थियों से तनाव रहित होकर परीक्षाएं देने, चुनौतियों से निपटने के व्यावहारिक तरीके अपनाने, सामंजस्य स्थापित करने और आत्मविश्वास बढ़ाने पर जोर दिया। श्री मोदी ने बताया कि इस वर्ष परीक्षार्थियों के साथ देवमोगरा, कोयम्बटूर, रायपुर, गुवाहाटी और दिल्ली स्थित उनके आधिकारिक आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर महत्वपूर्ण सत्र आयोजित किए गए। जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय ने 40वीं दिल्ली राज्य तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025-26 में लगातार दूसरे वर्ष राज्य चैंपियन बनी है। इस अवसर पर कुलपति प्रोफेसर मजहर आसिफ ने विजयी टीम के सदस्यों को सम्मानित किया। विश्वविद्यालय ने सीनियर वर्ग में कुल 18 पदक जीते। ये 3 दिवसीय टूर्नामेंट दिल्ली तीरंदाजी संगठन द्वारा राजधानी के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया गया था। ईशा सिंह ने एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा का स्वर्ण पदक अपने नाम किया। नई दिल्ली में आज फाइनल में उन्होंने चेंग येन चिंग और यू ए वेन को हराया। वहीं ईशा, मनुभाकर और सुरुचि सिंह ने महिला टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक भी जीता। पुरुष वर्ग में सम्राट राणा ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई आज से शुक्रवार तक अपनी मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की बैठक करेगा। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा की अगुवाई वाली 6 सदस्यीय समिति का फैसला शुक्रवार को घोषित किया जाएगा। भारत ब्रिक्स देशों में विनिर्माण कंपनियों और सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यमों को एकीकृत सहायता प्रदान करने के लिए ब्रिक्स औद्योगिक दक्षता केंद्र बीसीआईसी में शामिल हो गया है। इसकी घोषणा नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में की गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद एनपीसी को ब्रिक्स औद्योगिक दक्षता केंद्र के रूप में नामित किया गया है। राजधानी दिल्ली में आज सुबह धुंध छाई रही, वहीं दिन के समय धूप खिली रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 22.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो 8.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। विभाग के अनुसार कल सुबह भी कोहरा छाए रहने की संभावना है और कल का अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के अंतर्गत मिस्ट स्प्रे सिस्टम और एंटी स्मॉग गन लगाने का लक्ष्य निर्धारित समय से पहले हासिल किया गया। दिल्ली सरकार के उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा 2026-27 के केंद्रीय बजट में महिलाओं के लिए बजट में 11% की बढ़ोतरी की गई। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने शेयर बाजार में निवेश पर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय साइबर गिरोह का पर्दाफाश कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और ईशा सिंह ने एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।